परम प्रकाश रूप उपाधि रहित परमात्मा इस दस्तन से रक्षा करो जिससे हमको जल्दी वृंदावन वास मिले। उन्होंने तो लिखी थी भगवान की स्तुति और अकबर ने पढ़ा तो बोले वाह वाह, मैं उसे मेरे प्रति रोष होना चाहिए था लेकिन मुझे कितनी बड़ी उपाधि दे डाली थी, दस दिनमणि दिनमणि बता दिया। वाह वाह वाह, अकबर ने पता लगाया, दस्तम खां को दंडित किया और तुरंत इनको छोड़ दिया। बोले आप फिर से अपने पद को स्वीकार कर लो। बोले महाराज ज्यादा प्रसन्न हो तो हमको माफ करो, न कभी हमारे पास आना और न कभी हमको अपने पास बुलाना, हमको वृंदावन वास करना। वृंदावन चले आए और उनकी समाधि, ये मदन मोहन जी का मंदिर है ना, माने मदन मोहन जी के नीचे ही समाधि, जब जाते हैं तो मदन मोहन सूरदास जी की समाधि, बड़े दिव्य महापुरुष। महाराज जी इतने बड़े आदमी, इतने बड़े विद्वान और वृंदावन वास करते थे, किसी कुंज के नीचे, किसी लता के नीचे पड़े रहते, सर्वांग शरीर में ब्रजरज का लेप करते और रोज मधुकरी भी नहीं मांगते। महीना 15 दिन में कभी एक दिन मथुरा जाकर वहां के ब्राह्मणों के यहां से, ब्रजवासियों के यहां से मधुकरी मांग लाते। आप लोग कहें वृंदावन, वृंदावन में कोई गृहस्थ लोग थे ही नहीं, दो चार दस साधु थे, कहीं कोई विराज रहे कहीं कोई विराज रहे, बस घोर जंगल था। इसलिए मधुकरी मांगने सब या तो गांव में जाते थे या मथुरा जी विशेष सुविधा थी, कभी कभी मथुरा मधुकरी मांग लाते। श्री सनातन गोस्वामी पाद भी मथुरा जी मधुकरी मांगने जाते थे, उल्लेख। एक लगोटी में पड़े रहते। ठाकुर जी एक दिन प्रकट हो गए, बोले देख लिया हमारा आश्रय लेने वाले को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कैसे ठाट बाट में थे और कहां यहां देखो कोई पूछने वाला नहीं है, पड़े लंगोटी में। अब ऐसा करो, हमको बढ़िया से तुमने जांच परख लिया, अब तुम स्वतंत्र हो जाओ। अरे आश्रय ऐसे का लेना चाहिए जिसमें थोड़ी भी तो थोड़ी दया तो हो। देख लिया, अरे बड़े बड़े लोगों ने कहा है जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत प्रीत न करियो कोई। इसलिए अभी भी अवसर है। आहा, मदन मोहन सूरदास जी ने ठाकुर जी को डांट दी, बहुत प्यारा पद, हमको बड़ा प्रिय लगता है ये मदन मोहन सूरदास जी का पद। हे नाथ आप ही एकमात्र मेरी गति हैं। हमारे जैसे से आपका तो कोई प्रयोजन सिद्ध होना है नहीं, हमारी आपको कोई जरूरत नहीं, पर हम अपनी मजबूरी बता रहे हैं, हमारे लिए आपको छोड़कर दूसरा।
मेरी गति तुम ही न और तोस पाऊं, मेरी गति ही न और तोस पाऊं,
चरण कमल नख मणि पर,
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 विषय सु सुख बहाऊं,
विषय सुख बहाऊं,
मेरी गति तो मैं न और तोस पाऊं,
मेरी गति तो मैं न और तोस पाऊं,
घर घर जो डोलों को हरी जाऊं,
घर घर जो
तो
हरी तुम्हें ल जाऊं,
मेरी गति तुम की न और तोस पाऊं,
मेरी
घर घर जो डोलों तो आपके चरणों को छोड़कर आपके द्वार को छोड़कर घर घर जो डोलों तो हरी तुम्हें ले जाऊं,
तुम्हें रो कहाए कहो कौन को कहा,
तुम्हारो कहाए कहो कौन को कहाऊं,
तुम्हारो कहाए कहा कौन को कहाऊं,
तुम्हारो कहाए
कहा
कौन को
से, प्रभु छाड़ी कहा
तुम से, प्रभु छाड़ी कहा
दीनन को धाऊं,
दीनन को धाऊं,
मेरी गति तुम ही ना और तो तुम्हारो कहाए कहा कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु छाड़ी कहो दीनन पे धाऊं,
शीश तुम्हें नाय कहो कौन को नवा, शीश तुम्हें नाय कहो कौन को नवा,
शीश तुम्हें नाय कहो कौन को नवा,
शीश तुम्हें नाय कहो कौन को
पुरहार छाड़ी,
कंचन पुरहार छाड़ी,
कांच क्यों बनाऊं,
कांच क्यों बनाऊं,
मेरे गति तुम कीना और तो से पाऊं,
गति तुम और तोष पाऊं,
ता शोभा सब हानि करूं जगत को हसाऊं,
शोभा सब हानि करूं जगत को हंसाऊं,
जय ध्यान दें, पहले तहसीलदार थे, एक रियासत के सर्वे सर्वा थे, तो उस समय एक अलग वेशभूषा थी। अब वृंदावन में आ गए तो गुदरी करवा और ब्रजरज से मंडित श्री अंग, आहा क्या सुंदर द्वादश तिलक तुलसी माला माला झोली, क्या सुंदर दिव्य वैष्णव का वेश है। और अब फिर वही विषयी जीवों की वेशभूषा फिर से धारण करूं, संत की वेशभूषा संत की रहनी छोड़ करके दुनिया में हंसी होगी? हाँ हंसी होगी तो हमारी थोड़ी होगी, हंसी आपकी होगी। देखो पति को मालूम है कि हमारी पत्नी उत्तम कोटि की पतिव्रता नहीं है, इसमें अनेक दोष दुर्गुण हैं, फिर भी वह उसको त्यागता नहीं है, उसको भोजन देता है, वस्त्र देता है, आभूषण देता है। क्यों देता है? ये भूखी नंगी घूमेगी तो बदनामी इसकी तो होगी, हमारी ज्यादा होगी। देखो वो तो सेठ बने बैठे हैं, घरवाली की हालत देखो। सामान्य संसार का पुरुष भी नाम मात्र का आश्रय जिसने ले रखा है, केवल लौकिक संबंध है उसका इतना निर्वाह करता है, और हमारा तो आपसे अलौकिक संबंध है, हैं? आपकी हंसी होगी कि देखो एक का पोषण नहीं कर पाया फिर छोड़ के आना पड़ा। इसलिए
हाथी ते उतरी कहा गदहा चढ़ी जाऊं, हाथी ते उतरी कहा गदहा चढ़ी जाऊं, मेरी गति तुम और तो से पाऊं, मेरी गति तुम्हें और तो से पाऊं।
आप ही बताइए, हाथी ते उतरी कहा गधा चढ़ जाऊं, हाथी पर बैठने वाला गधे पर बैठेगा? आपकी शरण में आना हाथी पर बैठना है, और आपसे विमुख होना गधे की सवारी करना है। वृंदावन में बसा लिया, गिरिराज जी में बसा लिया, हाथी पर बैठ गए, अब गधे पर बैठने की जरूरत नहीं। हमारे वृंदावन के, हमारे ब्रज के ब्रजवासी भी ऐसे विलक्षण होते हैं। एक गिरिराज जी में एक ब्रजवासी मिले हो तो बाकी बड़े भैया ने कही कि महाराज जी कछु समझाए दो यार, ये बड़ी अच्छी नौकरी दिल्ली में छोड़ के चलवाए। हमने कही भैया नौकरी वैसी ब्राह्मणन को मुश्किल है, दुर्लभ है, और तुम्हें भगवान की कृपा से मिल गई तो तुम काहे को छोड़ के चले आए, दिल्ली कोई दूर थोड़े ही है, 5-7 दिन में रोज आ जाओ गिरिराज जी। बोले बाबा गए तो यही लिए नौकरी करवे, पर गिरिराज जी को वियोग सहन ना रहे। मन में ये आई गिरिराज जी में गधा तो पंजीरी फांक रहे हैं, गधा तो पूरी खा रहे हैं पंजीरी फांक रहे हैं, और सुअर गिरिराज जी को दूध पी रहे हैं, हैं? सुअर और गधा पेट भर के खाए रहे हैं, और हम ब्रजवासी ब्राह्मण हमारो पेट गिरिराज बाबा नाए भरेंगे, हम तो भूखे रह जाएंगे पर गिरिराज जी छोड़ के ना जाएंगे, बाबा हम तो छोड़ के चले आए। हमने उनके भैया को कहा, मैंने कि भैया तुम कछु या धंधो कराए दो, और नहीं तो यार ऐसी मस्त रहेंगे। परेशान इसलिए संतुष्ट नहीं, भगवान ने जहां रखा बहुत दिया, हम इस योग्य नहीं थे, बहुत दिया।
शोभा सब हानि करो जगत को हसाऊं, शोभा सब हानि करो जगत को
श्याम
हाथी ते उतरी का गदहा चढ़ी जाऊं
हाथी ते उतरी का गदहा चढ़ी
और तो से पाऊं
मेरी गति तुम और तो से पाऊं
कुमकुम मुख लेप छाड़ी काजर मुंह लाऊं
कुमकुम मुख ले चाड़ी
काम धेनु घर में तजी अजा क्यों दुहाऊं
काम धेनु घर में तजी अजा क्यों दुहाऊं
और तो से पाऊं
मेरी गति तुम
और
काम धेनु घर में तज अजा क्यों दुआऊं बकरी दुआऊं काम धेनु को निकाल दूं
कनक महल छाड़ी क्यों व परण कुटी छाऊं
कनक महल झाड़ी पर्ण कुटी
हाँ वृंदावन में रहना कनक महल में रहना है
महली की गति महली जाने का जाने बार बारो
इसलिए भैया वृंदावन में रहना महल में रहना है हमारी सब ही बात सुधारी कृपा करी श्री कुंज बिहारी ने और श्री कुंज बिहारी क्या कृपा बोले राखियो अपने वृंदावन में यही था रूप हो जाए
इसलिए कनक महल छाड़ी तो परण कुटी
कनक महल छाड़ी तो भरण कुटी जाऊं
पायन जो पहलो करूं तो कनक कहूं जाऊं
पायन जो पहलो करूं तो अनक कहूं मेरे गति धुमन और तो से पाऊं मेरे गति धुमन और तो से पाऊं
आज कुछ प्रेमियों ने संकेत किया है कि प्रसंगवश कोई महाराज जी की बात याद आवे तो जरूर कह देना पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज आज उनकी प्राकट्य तिथि पौष शुक्ल षष्ठी को आज ही नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में कान्यकुब्ज विप्रकुल में कश्यप गोत्रीय पंडित लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी के यहां कैलासी देवी के कुख से पंडित श्री गया प्रसाद त्रिपाठी जी का जन्म हुआ महाराज जी का घर का नाम पंडित श्री गया प्रसाद जी त्रिपाठी पूज्य गिरिराजी वाले बाबा सरकार जब भगवत लीला में पधारे
महाराज जी बड़े व्याकुल हो गए। एक वाक्य उनके मुख से निकला और सुनकर महाराज जी व्याकुल हो गए, कहकर महाराज जी गदगद हो गए। महाराज जी ने कहा, एक गया प्रसाद जी तो ठाकुर जी की सन्निधि में पहुंच गए, अब दूसरे की सुध ठाकुर जी कब लेंगे, बस कहकर व्याकुल हो गए। बाद में पता चला महाराज जी का भी घर का नाम यही है। तो इस पंक्ति पद की एक पंक्ति पर हमें उनका स्मरण आ गया, कनक महल छाड़ चौंब परण कुटी छाऊ, इस पंक्ति पर हमें महाराज जी का स्मरण आ गया। हम सौराष्ट्र में सुदामापुरी जिसको पोरबंदर कहते हैं, वहां दिव्य आश्रम है श्री सांदीपनी गुरुकुल श्री रमेश भाई ओझा जी का, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बड़ा विशाल आश्रम है, बड़ा व्यवस्थित बना हुआ है, बहुत अच्छा गुरुकुल है, बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, वहां जाने पर किसी को भी बहुत अच्छा लगता है। हम भी कई बार जा चुके हैं। तो अपने राम पहली बार जब वहां से कथा करके आए, महाराज जी कहते थे पंडित जी सब समाचार सुना दो, तो हम सुनाने लगे। हमने कहा महाराज जी आश्रम तो वस्तुतः वहां हम देखे हैं, अरे महाराज 80-85 एकड़ में बना हुआ है, ऐसा बगीचा, यों रोड, यों त्यों, बहुत वर्णन करने लगे। महाराज जी हमारी बात को भांप गए, जो पंडित जी कह रहे हैं कि ये तो बहुत छोटी जगह है, आश्रम तो बड़ा होना चाहिए। और सच्ची बात कहें, हम कह नहीं रहे थे पर हमारे मन में जरूर था, क्या छोटी सी जगह, लंबा चौड़ा हो, वहीं गौशाला हो, बगीचा हो, यूं होते हो, ये मन में भाव आ गया था। अरे गुरुजन तो भीतर की देश जानते हैं ना, ये इसके भीतर क्या उथल पुथल हो रही है। महाराज जी ने सारा वर्णन सुना और सुनने के बाद कहा, पंडित जी वृंदावन की भूमि के बाहर सैकड़ों योजन में बने हुए मणियों के जटित स्वर्ण के महल भी वृंदावन की एक पर्ण कुटी की बराबरी नहीं कर सकते, एक झोपड़ी की बराबरी नहीं कर सकते। आप कहां रहते हैं आपको ये पता नहीं, आप वृंदावन में हैं। अरे इस लायक भी नहीं थे कि इतनी सी जगह में रहे हैं, यहां कोई जीव अपने पुरुषार्थ से रहता है क्या, ये तो श्री जी की ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है तब वृंदावन एक पलक जो रही है। इसलिए तुम्हारे भीतर जो ये वासना ये बड़ा बनाए इसको छोड़ दो, जहां भगवान ने रखा उसमें प्रसन्न रहो। उनके वचन निकलते ही और फिर बड़ा आनंद मिला चित्त में, हैं वृंदावन है, वृंदावन की समता करेगा कोई, बोले सोने का महल हो तो भी वो वृंदावन की समता तो नहीं कर सकता।
कनक महल छाड़ी चौंब परण कुटी छाऊं, कनक महल छाड़ी चौंब परण कुटी छाऊं, पायनी जो पहलो प्रभु तो अनत कहाँ जाऊं, पायन जो फैलो प्रभु अनत कहाँ जाऊं।
ठाकुर जी बोले यहाँ आ तो गए हो पर यहाँ करोगे क्या,
सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं।
ये जन्म जन्म गाऊं का मतलब मोक्ष भी नहीं चाहिए, खूब जन्म हो हमारे, बस ऐसे ही आपके गुणगण गाता रहूं।
मदन मोहन सूरदास जन्म जन्म गाऊं, मदन मोहन सूरदास जन्म जन्म गाऊं।
तन की पान ही को रक्षक कहाँ संतन की पान ही को रक्षक कहाँ
मेरी गति तुम और तो नयान दोष पाओ मेरे तुम और दोष पाओ
मेरी गति तुम नयान दोष पाओ मेरी गति तुम और दोष पाऊं
मेरी गति तुम और दोष पाऊं
हरिशरणम। अब स्मरण आ गया है तो तुलसी चरित्र तो हम कहेंगे ही, कहना ही है। महाराज जी की बात आ गई है तो पूज्य बक्सर वाले अनंत श्री संपन्न परम श्रद्धे पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज मामा जी, उन पूज्य श्री मामा जी महाराज ने कुछ महाराज जी के संबंध में लिखा है। पूरा कहने का अवसर तो नहीं है पर उनका एक छप्पे कह करके हम नमस्कार करेंगे क्योंकि फिर और अवसर नहीं है। अच्छा हाँ, पूज्य मामा जी महाराज जी के भी अपने ग्रंथ में भक्त भगवंत गुण कीर्तन में महाराज जी के संबंध में भी अपनी भावांजलि समर्पित करके तब किशोरी जी के यहाँ पधारे।
श्री वृंदावन वास किय श्री बाबा गणेश दास जी,
श्री वृंदावन वास किय श्री बाबा गणेश दास जी,
श्री वृंदावन वास किय श्री बाबा गणेश दास,
श्री वृंदावन वास किय श्री बाबा गणेश दास,
भक्तमाल भागवत कथा आजीवन गाए
साधु जी, भक्तमाल भागवत कथा आजीवन गाए
साधु जी, टीका करी भक्तमाल
साधु जी, टीका करी भक्तमाल
भक्तमाली कहलाए
भक्तमाली कहलाए,
साधु जी यथा लाभ संतोष
साधु जी, यथा लाभ संतोष
साधु जी, यथा लाभ संतुष्ट
साधु जी, यथा लाभ संतुष्ट
अकिंचन पर उपकारी
अकिंचन पर उपकारी।
संतों की वाणी भी कैसी होती है, कितने थोड़े शब्दों में स्वरूप को प्रकट कर दिया।
साधु जी यथा लाभ संतोष
साधु जी, यथा लाभ संतोष
अकिंचन पर उपकारी
अकिंचन पर उपकारी
अकिंचन पर उपकारी
अकिंचन पर उपकारी।
विराज
माने यथा लाभ संतुष्ट में कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम से कम आवश्यकताएं महात्माओं की रहती हैं, उसी में जो हो गया उसी में संतुष्ट हैं। पर महाराज जी की विशेषता तो हमने निकट रह के देखी, कुछ भी नहीं तो भी परम संतुष्ट। राजस्थान के एक गांव में कथा कहने गए सामोद के पास, सामोद है ना, चोमू सामोद, उसके पास एक गांव में कथा कहने गए। ठंडी का समय था, खेत में कथा थी, एक हनुमान जी का मंदिर था, खेत में वहां एक घर बना हुआ था, मशीन रखी थी वो डीजल पंप वाली बोरिंग की। उस घर में खिड़की भी नहीं था, माने लगाने वाली खिड़की बंद कर, खुला जंगला था, और फाटक भी नहीं था, ना फाटक ना खिड़की, जंगला कुछ नहीं, और ठंड का समय, और भीतर व्यवस्था क्या थी, बाजरे की करब वो बिछाई गई थी, और एक तखत था उस पे भेड़ के ऊन का काला काला मोटा कंबल, एक मिट्टी के घड़े में पानी, बस इतनी सुविधा थी। और हम लोग भूखे प्यासे क्यों महाराज, रास्ते में कुछ लेते नहीं थे, कुछ भी नहीं खाते पीते थे। अब हम लोग पहुंचे वहां रात को, तो हमें थोड़ी सी असुविधा का अनुभव हुआ, मतलब महाराज जी कैसी जगह आकर हम लोग रुके हैं। अरे बोले वाह, इससे उत्तम व्यवस्था कोई दूसरी हो ही नहीं सकती, देखो सब रोगों की यही दवा, मिट्टी पानी और हवा, कितनी बढ़िया खुली हवा आ रही है जंगला से खिड़की से, और बाजरे की करब की टटिया बनाई गई थी उनको, उनसे रोक की गई थी, अब उसमें कहां हवा रुके शीत लहरी चले। और बोले देखो जब वो आएगा किसान तो मोटर वो डीजल पंप चलाएगा तो नहाने को मिल जाएगा ताजे पानी से, और घड़ा में पानी है, और चाहिए क्या, भूख लग रही हो, हमारे पास में चना है भुना हुआ, और अग्नि दीपक चूर्ण है, जायके का जायका, फायदे का फायदा, थोड़ा चना खा लो पानी पी लो। और लैंटर्न जल रही थी, लैंटर्न उसको बुझा दिया, क्यों बोले कि वो मिट्टी के तेल की गंध से महाराज बोले देवता भाग जाते हैं, केरोसिन के तेल की गंध से देवता भाग जाते हैं, उनको असुविधा होती है, तो अपने कोई पुस्तक तो पढ़ना नहीं है, बंद कर दो इसको, मरा पर अंधेरा हो जाएगा। बोले बाहर भगवान की लाइट जल रही है, चंद्रमा चांदनी का प्रकाश था, बाहर भगवान की लाइट जल रही है, संतोष करो, उसको भी बंद करवा दिया। और बिजली न रहे तो भी हमारी पढ़ाई तो हो जाती थी, महाराज पढ़ाते थे तो कहते थे देखो भाई ऐसी लेटे लेटे भी पढ़ाने लग जाते थे, व्याकरण पढ़ाने लग जाए, कुछ कोई चीज पढ़ाने लग जाए, और कहते बैठने की भी जरूरत नहीं पढ़ने के लिए, लेटे लेटे पढ़ लो, हम लेटे लेटे पढ़ा रहे हैं, गुरु जैसे पढ़ा में चेला वैसे ही पढ़े, ऐसी दया ऐसी करुणा अद्भुत, उसी में पूछते जाते उसी में बताते जाते। कहीं अत्यधिक असुविधा होने पर भी कभी उन्हें यह अनुभव नहीं हुआ कि असुविधा, कोई कहता महाराज जी कोई असुविधा तो कहते आज तक तो भगवान की कृपा से कहीं भी कोई असुविधा का अनुभव ही नहीं हुआ, अब आपके कहने से नया कुछ हो जाए तो पता नहीं, हमें कहीं असुविधा का अनुभव, ये उनकी रहनी है। और अकिंचनता ऐसी थी कि हमारे जैसे में तो स्वप्न में भी वो नहीं आ सकते, हम साथ वालों को भी सावधान करते रहते महाराज, उन महापुरुषों के आदर्शों का हम लोगों को बार बार चिंतन करना चाहिए। भैया जी बड़ा प्रेरक प्रसंग है, दमोह में महाराज जी ने कई वर्ष भक्तमाल जी की कथा कही, पूज्य पंडित श्री शिव शंकर जी दीक्षित दादाजी बड़े नाम प्रेमी महापुरुष थे, उनके यहां महाराज जी जाते थे, और करीब 10 वर्ष तक महाराज ने कथा कही, प्रतिवर्ष जाना। तो महाराज का एक लोटा था पीतल का, 3-3.5 किलो जल का, शौच आदि शुद्धि के लिए, तो वो लोटा कोई चोर जो है
सुदामा कुटी में आया रात को छत पर और महाराज का लोटा उठा ले गया। और महाराज जी जग गए थे, वो लोटा उनके सामने उठा रहा था। वो जगन्नाथ घाट पर रहता था, वो ब्रजवासी ही था, ठाकुर था। तो महाराज जी जग गए और देख लिया कि लोटा उठा रहा है। तो सवेरे महाराज जी बोले कि वो आए थे, लोटा ले गए, उनको जरूरत होगी। हमें कि महाराज जी आप जग रहे थे, आपने बोला नहीं। अरे बोले कोई बात नहीं, ब्रजवासी वैसे मांगता तो शायद लोभ आ जाता, ले गया, बेचकर कुछ ना कुछ अपना घर का काम चला लेगा, ले गए 3-3.5 किलो जल। अब तुरंत इसके बाद दमोह की यात्रा होनी थी, महाराज जी के पास जल पात्र नहीं था। तो महाराज जी ने हमको 200 रुपया दिए। बोले पंडित जी जाओ बाजार से एक पीतल का लोटा ले आओ, बर्तन जहां मिलते हैं वहां दुकान से एक लोटा ले आओ। अपने राम कभी बाजार में कभी कोई खरीदने का अवसर मिला नहीं, ऐसे ही सब प्रकार से अयोग्य हैं। तो हमने किसी सज्जन से पूछा कि यहां बर्तन की दुकान कहाँ है। उन्होंने पूछा कि आपको क्या आवश्यकता पड़ गई। तो जो सही सही बात थी हमने बता दी कि महाराज जी को एक लोटा था महाराज जी का, कोई चोर ले गया, महाराज जी को जल पात्र की आवश्यकता है, इसलिए हम जाकर खरीद के लाएंगे। उसने कहा आप क्यों परेशान होंगे, हम ले आकर के दे देते हैं लोटा। हमने कहा नहीं नहीं, महाराज जी की आज्ञा, हमको ही हम चलेंगे। बोले नहीं नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं। हम पैसा देने लगे तो उसने पैसा भी नहीं लिया और वो तुरंत साइकिल से गया, लोटा लेके आ गया, हमको लोटा दे दिया। हमने लोटा महाराज के पास रखा और 200 रुपया। बोले वाह पंडित जी, बड़ा ऊंचा भगत मिल गया, लोटा का लोटा दे दिया, पैसा भी नहीं लिया। हमने फिर सारी बात बता दी, महाराज जी ऐसे ऐसे हमने किसी व्यक्ति से पूछा, उसने कहा किसके लिए, तो ऐसे ऐसे। महाराज जी बोले तुम्हारे सरीखे पंडितों का यही अभ्यास रहता है और थोड़े रूखे स्वर में महाराज जी बोले अब तुम हमारे साथ रहने योग्य नहीं रहे, तुमने हमारा व्रत भंग कर दिया। आज तक आवश्यकता पड़ने पर भी हमने कभी किसी के सामने किसी बात को नहीं कहा है, हमें लोटा की जरूरत है, लंगोटी की जरूरत है, गमछा की जरूरत है, तुमने हमारा व्रत भंग कर दिया, तुम हमारे साथ रहने योग्य नहीं हो, चले जाओ वृंदावन, वहां पढ़ो और विद्यार्थियों को पढ़ाओ, अब आज के बाद तुम हमारे साथ नहीं रह सकोगे, हमारे ऊपर तो वज्रपात जैसा हो गया कि महाराज जी गलती हो गई, अपराध क्षमा कर, नहीं नहीं अब तुम हमारे साथ रहने योग्य नहीं। और हम तो कह कह के मंगाते हैं ये चीज हमें जरूरत है, ये चीज हमें जरूरत है। बाबा जानते हैं कोई बढ़िया चीज आ जाती थी तो महाराज जी अमुक व्यक्ति का स्मरण कर लेते, वो उन महात्मा के लायक है, अपने लायक नहीं। अपने तो पुराने कपड़े में फट जाता तो उसकी सिलाई कर लेते, सामान करके कुछ था ही नहीं कि ये सामान है, ये सामग्री उनके पास। एक अंडी खरीद के हम लाए, सर्दियों का समय था, हठपूर्वक महाराज जी को उड़ा दिया। बोले लो प्रसादी हो गई तुम उड़ो, बहुत अच्छा कपड़ा हमारे शरीर पर शोभा नहीं देगा, ले जाओ उसको। हमने हठपूर्वक उनको उड़ा दिया और एक धुस्सा ओढ़े हुए थे पुराना सा, सर्दियों का समय, तो उसको हमने कहा हमारा इसको रख दीजिए, इसको उड़ लिया, जबरदस्ती उड़ा दिया। थोड़ी देर बाद ठीक 1 घंटे बाद हम आए तो हमने देखा महाराज जी वही धुस्सा उड़े, कपड़ा नहीं, कहाँ गया। अरे बोले एक महात्मा आया, बोले महाराज कपड़ा तो बहुत अच्छा है। हमने कहा प्रभु आपको आवश्यकता है, बोले हाँ मिल जाए तो बड़ी कृपा हो, दे दिए। हमने कहा ऐसा पता होता कि ऐसे कोई अल्फतिया ले जाएगा आपसे तो हम ही ले लेते, बहुत कीमती कपड़ा था। बोले भाई देखो हम जैसे रहते हैं हमारे लिए वैसे ही थी, ये उनकी रहनी थी।
साधु जी जथा लाभ संतुष्ट,
साधु जी जथा लाभ संतुष्ट,
अकिंचन पर उपकारी,
अकिंचन पर उपकारी।
साधु जी अतिशय सरल सुबोध,
साधु जी अतिशय सरल सुबोध,
साधु जी अतिशय सरल सुबोध।
साधु जी अतिशय सरल सुबोध।
सुहृद सुठी संशय हारी,
सुहृद सुठी संशय हारी,
सुहृद सुठी संशय हारी,
सुहृद सुठी संशय हारी।
हमारे यहाँ
सूरश्याम चंद्र सरोवर गौशाला में उत्सव होता है, वार्षिक उत्सव सूरदास जी महाराज का, सूर्य जयंती का उत्सव होता है। तो उसमें एक मटकी प्रतियोगिता हुई, ब्रजवासी बालिकाएं वो मटकी को ठाकुर जी की विचित्र लीलाओं को रंगों से सजा करके लाई। उसमें महाराज जी को पुरस्कार देना था, कौन प्रथम कौन द्वितीय कौन तृतीय रहा। तो महाराज जी निर्णय करो, मटकी सबकी देखी है, सब में लाल ठाकुर जी का चित्र लीला देखी है, कौन प्रथम कौन द्वितीय कौन तृतीय। महाराज जी एकदम भाव विवल हो गए, गदगद हो गए, हाथ जोड़ करके कहते हैं, हमें तो सब प्रथम ही दिखाई पड़ती हैं, द्वितीय तृतीय कोई दिखाई नहीं पड़ता, सब ब्रज गोपी हैं, सब प्रथम श्रेणी की ही दिखाई पड़ती हैं। अरे बोले आयोजकों ने कहा, महाराज सब प्रथम होने से सबको प्रथम पुरस्कार तो नहीं मिल जाएगा, ये तो परीक्षण हो रहा है विद्यालय का, तो प्रथम कौन रहा, द्वितीय कौन रहा, तृतीय कौन रहा। बोले हमारा विवेक नहीं, हमारे लिए सब प्रथम है। बड़ी ऊंची भावना, बहुत सरल। एक और ब्रज का एक महाराज जी का प्रसंग सुना दें। एक फरुखाबाद जिले के एक अनी भोज गांव के एक कानकुब्ज विप्र थे, पंडित बालक राम जी दुबे, बहुत अच्छे थे बेचारे, सीओ साहब जी महाराज जी के शिष्य थे, महाराज जी उनके प्रति मित्र भाव रखते, वो महाराज जी के प्रति गुरु भाव रखते। तो वे एक ब्रजवासी के घर में किराए से रहे। उस समय में सरकारी लोगों को ज्यादा मकान वकान सरकारी नहीं मिलते थे, किराए से रह जाते, किराए से रहे। तो उस घर में एक घटना घटी, गिरिराज जी की बात है बाबा, ब्रजवासी के घर में एक घटना घटी। घटना ये घटी, घटना नहीं थी वो, तो रोज की बात है, सामान्य बात है, उसको घटना कैसे कहें, पर हाँ एक दिन की ऐसी बात है। उसकी जिस घर में थे उसकी ब्रजवासिन मैया, उसकी छोरी रो रही थी, वो डोल डाल कर आई और वो छोटी छोरी चिल्लाई रही, रोई रही कि वो मैया शुद्धि कराए दे, और मैया किसी काम में लग रही थी। वो छोरी डोल डाल करके बड़ी जोर से रो रही थी, चिल्लाई रही छोरी। सो ब्रजवासी बोलो, गोवर्धन कोई पंडा ब्रजवासी बोलो, अरे भगवान, बीवी कहे ना, बीवी तो स्वामी जी, बीवी कहे ना, बीवी काय को किल्लाए रही है, छोटी बच्ची, बीवी काय को किल्लाए रही है। अरे बोले ये तो बस सवेरे से संध्या तक ऐसी किल्लावे रोवे ऐसी, मैं घर को काम करूं कि आए देखूं। तब तक फिर वो रो रही थी बच्ची, तो पति ने फिर डांटा, देख क्या क्यों रो रही है। तो वो दौड़ के आई, शुद्धि करा दी, फिर भी छोरी रो रही थी, एक दिया पीठ में धम्म से, कहा मेरी सौत चुप है जा, काय को खिला रही है। छोरी से क्या कहा, अरे मेरी सौत चुप है जा, काय को खिला रही। अब उन सीओ साहब जी को बेचारों को बहुत खराब लगा, बोले बड़े असभ्य होते हैं ब्रजवासी, ब्राह्मण हैं कहने को, तो बताओ मैया ही अपनी बेटी से सौत कह रही है। महाराज जी से बोले, हमको तो वो जगह बदलवा दो, दूसरी कोई जगह बताओ, वहां रहेंगे, बड़े खराब लोग हैं, बताओ ऐसे ऐसे कह रही। तो महाराज जी के सामने उन्होंने दोहराया कि ये कहा, सुनते ही महाराज जी रोने लग गए, तो आप क्यों रो रहे। महाराज जी ने कहा, सीओ साहब जी, ए ब्रजवासियों की वाणी का रहस्य समझना आपके बस की बात नहीं है, यहां एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण है, और जो भी ब्रज में कन्या हो, चाहे बली बालिका हो, चाहे बूढ़ी हो, सब श्री कृष्ण की ही है। इस नाते से वो कह रही कि मेरी सौत चुप है जा, भाव समझो, अर्थ समझो, ब्रजवासन में दोष मत देखो, ब्रजवासन में दोष देखने को अधिकार नहीं। अब भले ही उसने क्यों कही होगी, पर महाराज जी ने यह भाव लगाया कि ब्रज में पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है तो वो भी श्री कृष्ण की है, और जो छोरी पैदा हुई वो भी श्री कृष्ण की है, इस नाते से दोनों के एक पति श्री कृष्ण, इसलिए सौत हो। अब बताइए इतना ऊंचा भाव।
साधु जी जथा लाभ संतोष,
साधु जी जथा लाभ संतोष,
अकिंचन पर उपकारी,
अकिंचन पर उपकारी।
साधु जी अतिशय सरल सुबोध,
साधु जी अतिशय सरल सुबोध,
सुहृद सुखी संशय हारी,
सुहृद सुखी संशय हारी।
हाँ भक्त बल्लभा टिप्पणी, कीर्ति पताका जासूती,
भक्त बल्लभा टिप्पणी, कीर्ति पताका जासूती,
भक्त बल्लभा टिप्पणी, पताका जासूती,
भक्तवल्लभा टिप्पणी, कीर्ति पताका जासूती।
श्री वृंदावन वास किय श्री बाबा गणेश दास जी,
श्री वृंदावन वास किय श्री बाबा गणेश दास जी।